15 श्री कृष्ण की ओर से युद्ध का दिन निश्चित होकर आते ही सेना में सेनापति के चयन की चर्चा प्रारंभ हो गई। दुर्योधन सबको मेरा नाम ही बता रहा था। अश्वत्थामा, दुशासन, मामा, जयद्रथ आदि उसका समर्थन कर रहे थे, परंतु मेरी इच्छा थी कि ज्येष्ठ होने के कारण पितामह भीष्म सेनापति का पद स्वीकार करें, परंतु यदि सब मुझी से आग्रह करेंगे तो अस्वीकार करना भी संभव नहीं था। इसीलिए अपने पिता को अंजलि भर भर कर अर्घ्यदान अर्पण करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना मेरा कर्तव्य था। ये युद्ध से पूर्व के अर्घ्यदान थे। पिता, पुत्र, संगी, साथी, ऐसे किसी प्रेम पाश में मन का कोई भी धागा इस समय उलझना नहीं चाहिए था। आस्था, एकाग्रता, आत्मसमर्पण, इनके अतिरिक्त अन्य कोई भी भाव मन में व्यक्त नहीं होने देना था। ऐसे ही एक सुप्रभात में मैं अपनी भाव साधना में तल्लीन था। चारों ओर नीरव शांति थी। किनारे पर स्थित विष्णु मंदिर में कोई भक्त घंटा बजा रहा था। उसकी ध्वनि तरंगे जब तक कानों में टकरा रही थी। मेरी अंजलि के जल के प्रत्येक बूंद टप टप आवाज करती हुई गंगा से पूछ रही थी, इस कर्ण ने अपने जीवन में आज तक कितनी अंजलियों का दान किया है, क्या तुम्हें स्मरण है? गंगा ऊपर मुख करके अपने असंख्य लहरों रूपी नेत्रों से मेरे पिता से ही उसका उत्तर पूछ रही थी। उनके उस मौन संवाद को मैं समझ रहा था। दोनों ही एक दूसरे को उत्तर नहीं दे सकते थे, इसीलिए मैं उनसे कह रहा था, गंगा माता तुम्हारी जल लहरियों के समान और सूर्यदेव तुम्हारी प्रकाश लहरियों के समान, असंख्य अर्घदान ये अंजलियाँ मैंने आपको अर्पण की होंगी। उनमें ही आज यह थोड़ी सी वृद्धि और कर रहा हूँ, इनको भी सम्मिलित कर लो। उद्यान को फुलवारी, आकाश को तारक, आम वृक्ष को कम अधिक विकसित बौर और माता को पुत्र, क्या सभी भार स्वरूप लगते हैं? तो फिर श्रद्धा से, प्रेम से और भक्तिभाव से आकंठ भरी हुई मेरी ये अंजलियाँ आपको ही कैसे भार स्वरूप लग सकती हैं? आप ही हैं मेरे माता पिता। गंगे, तुमने मुझे तारा है। सूर्यदेव, आपने मुझे संकट की सूचना देकर, चेतावनी देकर उपकृत किया है। मैं तुम्हारा ही पुत्र हूँ। दुर्योधन, मामा, अश्वत्थामा, पितामह, विदुर, महाराज धृतराष्ट्र, अब किसी से एक शब्द भी बोलने की इच्छा नहीं होती। जीवन की यात्रा में क्षण भर को मेरे आसपास इकट्ठे हुए असंख्य यात्री हैं ये, परंतु आप साक्षात वे परमेश्वर हैं जिनके लिए मैंने यह विकट यात्रा की है। बोलिए, कुछ तो मुझसे बोलिए, बताइए इस यात्रा में क्या मेरे साथ में से कोई प्रमाद हुआ है? कर्ण द्वारा कर्तृत्व को कहीं कालिमा लगी है? मैंने जो कौरव पक्ष को चुना, क्या इसमें मेरा कुछ स्वार्थ है? कौरव न होते हुए भी मैंने कुरुओं के लिए जो कुछ किया, वो अपने माता पिता होते हुए भी कभी मेरे लिए किया है क्या? सारा हस्तिनापुर कह रहा है कि कमज कुंडल रहित शापदग्ध कर्ण निष्प्रभ है। उनको मैं कैसे विश्वास दिलाऊं कि घटा गिर जाने का अर्थ यह नहीं होता कि संसार पर अंधकार का साम्राज्य छा गया है? कहिए, कर्ण अभागा है, सामर्थ्यहीन है, या कहने का अधिकार किसी को है क्या? आखिर भाग्य, सामर्थ्य, यश, इनको मापने की कसौटी क्या है? संपत्ति, राज्य, कीर्ति, केवल जीने के लिए जी हुई शतवर्ष की दीर्घायु? नहीं, इनमें से कोई विकल्प मैंने कभी नहीं चुना। गंगे, तुम्हारी लपलपाते हुई असंख्य जल लहरियां जैसा ही है मेरा जीवन। सूर्यदेव, चेतना का वरदान लेकर आने वाली तुम्हारी सहस्त्रों किरणों जैसा ही मेरा जीवन रहा है। कभी कभी वर्षा की धार बरस जाती है और तुम्हारी किरण शलाका से श्वेत, हरित, नीला, बैंजनी आदि सप्तवर्ण फेंकने वाला इंद्रधनुष तैयार हो जाता है। अखाड़े का दिन, पांचाली का स्वयंवर, विशाली से विवाह, कवच कुंडलों का दान, श्री कृष्ण की बातों की अस्वीकृति, यह मेरे जीवन के अनेक भावों को प्रकट करने वाला वैसा ही इंद्रधनुष नहीं है क्या? मुझे शक्ति दो कि मैं इस निकटतर होते हुए महायुद्ध में आपके नाम और आपके कुल के अनुरूप लड़ सकूं। मेरी भाव श्रद्धा की यह अंजलियां स्वीकार कर लो। 1, 2, 5, 10, 50, 100 मेरे हाथ से जल की अंजलियां गंगा के पात्र में एक रूप हो रही थी। आसपास के जगत का मुझे भान भी नहीं था। क्षण प्रति क्षण मन अविचल भाव से हिमालय की तरह सुस्थिर होने लगा। ठीक मध्यान्ह काल हो गया। सूर्यदेव माथे पर आ गए। गंगा तट की बालू शायद अत्यधिक तप्त हो गई थी, क्योंकि उष्ण वायु की अत्युष्ण लपटों का अनुभव मेरी खुली हुई भुजाएं स्पष्ट रूप से कर रही थी। आधे शरीर को गंगा के जल का शीतल स्पर्श तो आधे को तप्त वायु का दाहक स्पर्श। जीवन में सुख दुख क्या इसी प्रकार एक दूसरे के पार्श्व में लेटे हुए नहीं रहते, जैसे गंगा का शीतल पात्र और तट पर तप्त मरुभूमि पड़ी हुई है। बहुत समय हो गया था, इसीलिए पात्र से बाहर निकलने के लिए मुड़ा, क्योंकि सेनापति के चयन की बैठक मेरे बिना प्रारंभ नहीं होने वाली थी। इस ओर उत्तरी रखा हुआ था, उस परिचित कदम वृक्ष की ओर चलने लगा। मन स्थिर एवं अविचल था। पानी से बाहर निकलते ही तप्त बालू से पैरों के तलवे जलने लगे। दुर्योधन ने यदि सेनापति पद का आग्रह मेरे लिए ही किया, तब सभी योद्धाओं को पितामह का महत्व कैसे समझाया जाए। दुर्योधन के मन को ठेस न पहुंचाते हुए उससे यह कैसे कहा जाए कि पितामह द्वारा ही सेनापति का पद स्वीकार करना उचित है। कुछ भी हो, पितामह ज्येष्ठ तो हैं ही, उन्होंने वर्षों तक कुरुओं का नेतृत्व किया है, वे ही सेनापति होने के योग्य हैं। मैं उनके नेतृत्व में लड़ूंगा। विचारों के तंद्रा में ही कदम के पास आया। उसकी शाखा पर उत्तरी ज्यों का त्यों टंगा हुआ है या हवा से उड़ गया है, यह देखने के लिए सिर उठाकर उस पर दृष्टि डाली। सामने जो कुछ देखा वह सत्य है या स्वप्न, इस संदेह से मन की मरुभूमि पर स्मृतियों के असंख्य बालुकण सहसा स्वच्छंद उड़ने लगे। मैं जल में हूँ, किनारे पर बालू में हूँ, कर्ण हूँ या अन्य कोई हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरे जीवन में मुझे प्रचंड आघात देने वाले अनेक समर प्रसंग आए थे, शब्दाव को साक्षी बनाकर यथाशक्ति धीरोदात भाव से मैंने उनका सामना किया था। परंतु मैं सामने जो कुछ देख रहा था वह पूर्ण रूप से मेरी गहरी खाई में डालने के लिए पर्याप्त था। मेरे उत्तरी की छाया में सूर्यदेव से अपना मुंह छुपाने के लिए कदम वृक्ष के नीचे तप्त बालू में शुभ्र केशांकित राजमाता कुंती देवी संपूर्ण शरीर को वस्त्रों में छिपाए खड़ी थी। उनके दर्शन मात्र से ही मेरे जीवन का रथ चक्र मेरे सामने घर घर घूमने लगा। कितनी घटनाएं, कितने आरे, अश्व नदी का पात्र, हिचकोले खाते हुए लकड़ी की पीटिका, सारथियों के पणकुटी की जीर्ण झोपड़ी का आश्रय लेकर पला हुआ मेरा अनाथ बचपन, सूत पुत्र कहकर ठुकराया गया मेरा एकाकी कुंठित और अपमानित यौवन, छत बिछत भग्न नौका की तरह परिस्थितियों के निर्दय क्रूर लहरों के अनगिनत थपेड़े खाता हुआ अब तक का मेरा संपूर्ण जीवन, मान का ज्ञान भी जिस समय मन को नहीं था उसी समय से सामने आ खड़ा होने वाला अपमान, या वही स्त्री वही थी जिसने एक सुदृढ़ पाषाण से सुडौल मूर्ति न बनाकर उसको एक ऐसी मैली सीढ़ी बना दी थी जिसको सब अपने पैरों तले रौंदे, यही वह स्त्री थी जिसने मेरे जीवन रूपी राजवस्त्र को चितड़े चितड़े कर समाज के कटीले बाढ़ पर बिना झिझके टांग दिया था, या वही स्त्री थी जिसने मेरी आयुष्य के राजकमल को अश्व नदी के गंगंदे जल में फेंक कर उसको पंख बनाने का क्रूर प्रयत्न किया था, या वही स्त्री थी जिसने राजमुकुट में लगाने योग्य राजरत्न को एक सारथी के कंठ में पड़े हुए फूटे वैदुर्यों के साथ गुथ डाला था। किस लिए वह आज मेरे सामने खड़ी थी, स्त्री माता, मांगल्य का महामंदिर, मातृत्व का मृदुल महात्म्य, महाकवियों और महामुनियों द्वारा वर्णित पवित्र पूजा स्थान, सिद्ध साधक गंधर्व चारण देव आदि जहाँ सिर झुकाते हैं वह मुक्ति स्थान, वह मेरे सामने किस रूप में खड़ी थी। सद्योजात शिशु को खा लेने वाली बाघिन और मेरे सामने खड़ी स्त्री में क्या अंतर था। पैरों के तले नीचे तप्त बालू से मेरे पैरों के तलवे जल रहे थे, उससे अधिक मेरा मन उनके दर्शन से जलने लगा। समस्त ब्रह्मांड ही चक्राकार घूमता हुआ मुझसे चिल्लाकर कह रहा था कि कर्ण तू सूत पुत्र है, तू सूत पुत्र है। मुझसे ऐसा आभास हुआ जैसे वह स्त्री भी उसी में अपना स्वर मिलाकर वैसे ही चिल्ला रही है। दोनों हथेलियों से कसकर मस्तक पकड़कर मैंने तत्क्षण आंखें मीच ली। मेरी इच्छा हुई कि आकाश में स्थित सूर्यदेव का तप्त तेजो गोल मेरे सिर पर गिरकर क्षण भर में मुझे पिघला दे तो अच्छा हो। फिर भी यह निर्दय स्त्री मेरे पिघले हुए शरीर के प्रवाह पर पैर रखकर लौटने में आगा पीछा नहीं देखेगी। इस विचार से मैं कहीं विक्षिप्त तो नहीं हो जाऊंगा, यह आशंका मुझे व्याकुल करने लगी। जाओ यहाँ से, यह चिल्लाने के लिए मैंने आंखें खोली। वह उसी तरह मेरे उत्तरी की छाया में सिकड़ी हुई खड़ी थी। हम दोनों पहले ही बार मिल रहे थे। यही एक अवसर था जबकि मैं उसे सुतपुत्र शब्द की हृदय को टूक टूक कर देने वाली असह्य यातना के संबंध में कुछ सुना सकता था। सौभाग्य से जीवन में यही एक पासा मेरे द्वारा डाला जा रहा था। यह राधेय सुतपुत्र आपको वंदन करता है, वंदनीय राजमाता। आगे बढ़कर तप्त बालू में घुटने टेक कर मैंने उनको वंदन किया। आत्मा को आत्मा ही से सचेत करना पड़ता है। कर्ण उठिए, उसने भुजा पकड़कर मुझे उठाया। मेरे लिए आदर सूचक संबोधन मत कीजिए राजमाता। महाराज धृतराष्ट्र के रथ के घोड़े हाँकने वाले, उनकी देखभाल करने वाले सारथी अधिरथ का पुत्र हूँ मैं। सौभाग्यशाली नहीं हूँ, नहीं तो आपके भी राजपद की वलगाय हाथ में लेकर मैं आपकी सेवा करता। कर्ण मुझसे आप कहकर मत बोलो। श्री कृष्ण ने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, अब तो हृदय को टूक टूक कर देने वाली कोई बात मत कहो। पुत्र तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, तुम अच्छी तरह जान गए होगी कि तुम कौन हो। बोलो, मेरी आंखों के आंसू कम से कम तुम्हें परिचित लगते हैं या नहीं। वह अपना अश्रांत मुख हथेलियों में छिपाकर सिसकने लगा। आंसू धधकते हुए हृदय की ज्वालाएं आंसुओं से कभी बुझा नहीं करती। आंसू क्या, यदि तुम अपना मस्तक पटक कर रक्त रंजित कपाल भी मेरे यहाँ मेरे सामने लाओगी तो उस रक्त को भी मैं पहचान नहीं पाऊंगा। स्तप्त मरुभूमि जैसा मेरा जीवन तुम्हारे राज जीवन के शीतल गंगा पात्र को कभी स्पर्श नहीं कर सकेगा। मैं भला कौन और क्या हूँ? तुम राजमाता हो, पांडवों की भाग्यशाली जननी। कर्ण, अपनी माता को राजमाता कहकर उसके वृद्ध मन पर धधकता हुआ अंगार मत रखो। पुत्र आओ, मुझे आलिंगन दो। उसने अपने कांपते हुए हाथ फैला दिए। डबडबाई हुई आंखों के पलक हलचल कर उठे। माता 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 कहलाने वाली निर्दयी स्त्री, तेरा हृदय इतना कठोर पाषाण है कि यदि सचमुच ही कोई धधकता हुआ अंगार उस पर रख दिया जाए तो वह भी बूझ कर राख हो जाएगा। माता कहलवाने का कौन सा अधिकार जताने के लिए तू बिना किसी संकोच मेरे सामने आई है? आज ही तेरे मातृत्व में यह ज्वार क्यों आया? नाते की दिखावटी ढाल लेकर आने वाले निर्दय, मेरी माता है अश्वनदी, चरमणवती गंगा, मुझे अपनी पर्णकुटी के जीर्ण छप्पर में आश्रय देने वाली राधा माता, और अंत में अपनी गोद में चिर विश्राम देने वाली यह मेरी पुण्यवंती आर्यभूमि। अपनी कलंकित जिह्वा से माता शब्द का उच्चारण कर उसकी पवित्रता भ्रष्ट करने का महापातक फिर से इस कर्ण के सामने मत करना। जा, पांडवों की पराक्रमी पंचकड़ी में रमण कर, पुण्य प्राप्त करने के लिए विदुर जी के पर्णकुटी में व्रत पूजा कर। श्री कृष्ण को भात परोस कर उसकी मन्नतें करती हुई कह कि अधीरथ का पुत्र उन्मत्त हो गया है, भीम की गदा से उसका सिर कुचलना ही होगा। जा, अश्व नदी में छोड़ी हुई मेरे जीवन नौका को अब विश्व के महासागर में रोकने में तुम्हारे चुर्रियों से भरे हाथ की पतवार बिल्कुल समर्थ नहीं रही। बिना नार काटे ही जिस बालक को त्याग दिया था वह आज तेरे बालकों का काल बन रहा है, यह देखकर चुपचाप आंसू बहाती रहे। मैंने जीवन भर जो किया उसे तू कुछ क्षणों के लिए ही करके देख। जा कर्ण, तेरा पुत्र नहीं, तू उसकी माता नहीं है। शत्रु भी न दे ऐसा अक्षम्य दंड तूने एक अजान अबूद नवजात बालक को दिया है। कर्ण, कौरवों के साचर में रहकर दुर्योधन और दुशासन की तरह बातें करते हुए तुम यह भूल जाते हो कि अपने महान दुख को सहन करने के लिए देव ने तुम्हें सुदृढ़ पुरुष हृदय तो दिया है, परंतु मैं जिन यातनाओं को सहन कर रही हूँ वे मरण से भी अधिक भयानक है। बचपन से ही देव मेरी जीवन नौका का क्रूर थपेड़े लगाता हुआ इच्छानुसार बहाता रहा है। मैंने उसका जो त्याग किया वह एक माता द्वारा किया गया अपने पुत्र का त्याग नहीं। पुत्र प्राप्ति के लिए असंख्य स्त्रियों के मन व्यथित होते रहते हैं, यह देखकर भी कौन ऐसी माता है जो अकारण ही अपने पुत्र का त्याग कर देगी। परंतु तुम्हारा जन्म ही ऐसी परिस्थिति में हुआ था कि तुम्हारे और मेरे हम दोनों के जीवन में सम्मानपूर्वक जीने का और कोई मार्ग ही नहीं था। पुत्र, तुम्हारे वियोग में विगत 70 वर्षों से क्रंदन करते हुए मेरे मातृ हृदय को मेरे 5 पुत्र कभी नहीं देख पाए। श्री कृष्ण देवर विदुर जी तथा पितामह तक नहीं जान सके और आज तुम उसको समझने के लिए तैयार नहीं। तुम्हारा वियोग, वैधव्य, पुत्रों का वनवास, तुम्हारा घोर अपमान, द्रौपदी की विडम्बना और आज तुमने भाइयों ने एक दूसरे के विरुद्ध जो ताल ठोकी है, यह देखकर क्या कोई स्त्री पागल हुए बिना रह सकेगी? संसार को प्रकाशित करने वाले, अंधकार में मार्ग दिखाने वाले तुम्हारे उस विख्यात पिता ने मुझे भी कभी मार्ग दिखाया क्या? क्या तुम्हारे जीवन को भी प्रकाशित किया? नहीं कर्ण, साधारण लोगों के दुख साधारण होते हैं और वैसे भी असाधारण जनों के दुख भी असाधारण ही होते हैं। तुम्हें आंखें बंद कर चुपचाप सहन करने चाहिए थे, वे तुमने सहन किए ही। अब उनका अंत करो, चलो मेरे पुत्रों में चलो, अब तुम्हारा राज्याभिषेक करें या मैं एक बार जी भर कर देखूं। चलो। मैंने अपने नेत्रों की नीराजन को अश्रुओं की इंगुदी डालकर केवल इसलिए विगत 70 वर्षों से सतत प्रज्वलित रखी है। पुत्र, दुष्ट दुर्योधन ने तुम्हारे मन में मेरे पुत्रों के प्रति, तुम्हारे अपने बंधुओं के प्रति द्वेष का अंगार तुम्हारी समय समय पर स्तुति करके सदैव यज्ञ कुंड की तरह धधकता हुआ रखा है। चलो अपने बंधुओं के आनंद अश्रुओं से उन्हें शांत कर दो। मेरी आज्ञा मानकर एक पत्नी का अपने बीच विभाजन कर लेने वाले मेरे पुत्र मेरी बात मानकर तुम्हारे चरणों पर अपने मस्तक रखकर सिसक सिसक कर रोते हुए तुमसे क्षमा मांगेंगे। जो प्रतोद भीम ने तुम्हारे ऊपर उठाया था उसे अपने हाथ से तुम्हारे हाथ में देकर उसके आघात सहने के लिए वह अपनी पीठ तुम्हारे आगे झुका देगा। प्राण जाने पर भी वह छूं तक नहीं करेगा। तुम्हारे राज्याभिषेक के उत्सव के समय तुम्हारे प्रति अपना प्रेम व्यक्त करने के लिए अर्जुन अपना अच्छा बाणों का तरकश और अजय गांडीव धनुष धधकते हुए यज्ञ कुंड में अपने ही हाथों से डाल देगा। सदैव मेरे सम्मुख तुम्हारे संकुचित होते गए चरणों का वर्णन करने वाला तुम्हारा बंधु युधिष्ठिर सभी नदियों का पवित्र जल लेकर उससे तुम्हारे चरण धोएगा। सभी के साचर में जिसने अपना जीवन बिताया है वह मेरी विनयी विष्णुषा द्रौपदी शेष जीवन तुम्हारे ही सेवा में बिताएगी और तुम्हारे लिए केवल मन की अंधेरी गुहा में छटपटाने वाली मेरी अंतरात्मा देह का अंशु फेंक कर संतोष से स्वर्गलोक के द्वार खटखटा सकेगी। चलो कर्ण अपने बंधुओं में चलो। उसने मेरी भुजाएं पकड़कर जोर से झकझोरा। इंद्र को आगे कर मेरे कवच कुंडल लूटने वाले तेरे वीर पुत्र सुदामन और सोण की बलि लेने वाला अर्जुन सुतपुत्र कहकर ठुकराने वाली तेरी स्नुषा सारथी कहकर मेरा अपमान करने वाला भीम और भूख लगने पर जिसे रोने के अतिरिक्त और कुछ भी ज्ञात नहीं ऐसे अबोध निष्पाप निरागस और कोमल शिशु को अश्वनदी की महाबाण में ढकेलने वाली तुम सभी लोग यदि आज मुझे फिर से बंधुपति और पुत्र के रूप में स्वीकार करने को तैयार हो तो सचमुच ही तुम लोग बहुत बड़े ढोंगी हो। ढोंग चिरंतर है। यह सिद्ध करने के लिए ही क्या मैं आपके साथ चलूं? असंभव। कपटी दुष्ट कुटिल और हृदय शून्य मनुष्य भी ढोंगी मनुष्य से सहस्त्र गुणा श्रेष्ठ है। जा संपत्ति राज्य प्रेम पाश इनसे विचार बदले जा सकते हैं। यह बात मुझे संभव लगती हो तो दिग्विजय में प्राप्त संपूर्ण संपत्ति मैं तेरे चरणों पर डालता हूँ। झूठे पुत्र प्रेम की ढाल इस कर्ण के सम्मुख व्यर्थ ही मत रख। जिन हाथों ने प्रतोद और राजदंड समान भाव से पकड़े हैं मेरे उन हाथों ने तुझे वंदन किया है। इसी को भाग्य समझ और यहाँ से चली जा। झूठा पुत्र प्रेम बताओ मेरे रथ में 6 घोड़ों के स्थान पर 5 ही जुटे हुए तुम्हें कभी दिखाई नहीं दिए क्या? तुम्हारे विवाह में जो रेशमी साड़ी और अंगुलित त्राण दिए थे तुम्हें उसका स्मरण क्या नहीं है? जब तुम दिग्विजय से लौटे उस समय ऋषि कन्या ने तुम्हारे बाहर पर कुमकुम तिलक लगाया था इस बात को क्या तुम इतनी जल्दी भूल गए? राजसुयज्ञ के लिए जब तुम आए थे उस समय सौंत पर से मेरे हाथ से तुम्हारे चरणों में गिरा हुआ हस्ताभूषण क्या तुम्हारे पुत्र विश्वसेन के लिए नहीं था? इंद्रप्रस्थ के राजभवन की भित्ति पर क्रंदन करते हुए जो राज स्त्री चित्रित है वह मैं ही हूँ यह बात वे भित्तियाँ तुम्हें आज भी बता देंगी। उन पर ही क्या तुम विश्वास कर सकोगे? अखाड़े में तुम्हारा पराक्रम देखकर तुम्हारे वियोग से मेरा आंचल तर्रा उठा था, उससे मेरी कंचुकी भीग गई थी। यह बात सुनकर भी क्या तुम अनजाने बनना चाहते हो? कहो, यदि मैं चिल्ला चिल्ला कर हस्तिनापुर के प्रत्येक चौराहे पर यह कहूँ कि तुम मेरे पुत्र हो तभी क्या तुम मेरे मातृत्व पर विश्वास होगा? बोलो, यदि यही तुम्हारी इच्छा हो तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। तेरे तैयार होने से क्या होता है? उसको मानने के लिए संसार तो आज तैयार नहीं और तुझे तो आज उसकी आवश्यकता भी नहीं है। जन्म होते ही मेरा त्याग करके तूने मुझे आधा मार डाला और आज ठीक इस अवसर पर कहानी अनकहानी कहकर तूने मुझे पूरा ही मार दिया। इन 70 वर्षों में मेरे सामने आने के लिए तुझे क्या केवल आज का ही शुभ मुहूर्त उपयुक्त लगा? बता, इस समय मेरे स्थान पर तेरा भीम होता तो किसी भी प्रकार का विचार किए बिना अपने हाथ की गदा का प्रहार तेरे मस्तक पर कर तेरे रक्त से पैरों के नीचे की मरुभूमि रक्त रंजित करना क्या वह भूल जाता? मेरे स्थान पर युधिष्ठिर होता तो राजवस्त्र फेंक कर भगवा वस्त्र परिधान कर सन्यासी के रूप में तुम सबको छोड़कर क्या वह हिमालय को न चला गया होता? तेरा प्राण प्रिय अर्जुन होता तो अपना गांडीव तेरे कंठ में अटका कर वह आज क्या तुझे झकझोर न देता? परंतु मैंने तुझे वंदन किया है व्यर्थ ही विनम्रता दिखाकर मिथ्या मान प्राप्त करने के लिए नहीं अपितु श्री कृष्ण ने जो नाता बताया था उसकी स्मृति जागृत है इसीलिए। लेकिन तूने मुझे क्या दिया? शत्रु भी नहीं देगा ऐसा भीषण दुख, आंखें फाड़ने पर भी जिसमें कुछ भी दिखाई न दे ऐसा सघन विभ्रम। जाओ राजमाता, केवल पुत्र को जन्म देने से ही कोई स्त्री माता नहीं बन जाती। इसके विपरीत बिना जन्म दिए ही संस्कारों से एक मिट्टी के गोले की मूर्ति बनाई जा सकती है। इस महान कार्य को जिसको एक राजस्त्री न कर सकी, एक शूद्र की स्त्री राधा माता ने कर दिखाया है। जा हे राजस्त्री, राजभवन में पर्णकुटी में कहीं जा, तू एक भ्रांत चित्त माता थी और रहेगी। राम के लिए तड़प तड़प कर मर जाने वाली कौशल्या माता को तू न जान सकी। स्त्री के रूप में मातृत्व का जो सर्वश्रेष्ठ वर तुझे मिला था, उसे तूने जीवन भर शाप समझकर अपनाया। यदि याचक बनकर ना आई होती तो शीघ्र ही यहाँ से दूर चली जा। इस गंगा के किनारे पर खड़े रहने का तुझे कोई अधिकार नहीं है। नहीं, मैं जाने के लिए नहीं आई हूँ, तुम्हें ले जाने के लिए आई हूँ। राम के लिए ही प्राण त्यागने वाली कौशल्या राजभवन में थी। उसका कोई भी पुत्र रावण से जाकर नहीं मिला था। मैं पर्णकुटी में रहती हूँ। किस लिए? राजमाता के रूप में घूमने के लिए? नहीं पुत्र, तुम्हारे धवल जीवन पर लगा हुआ कलंक धो डालने का अवसर कभी तो मिलेगा, यह सोचकर ही मैं जीवित रही हूँ। और यदि प्राण दंड से ही मेरे मात्र प्रेम की प्रतीति तुम्हें होने वाली हो, तो वह भी मैं इस समय करके दिखा दूंगी। इसी क्षण गंगा को साक्षी बनाकर, परंतु तुम दुर्योधन की ओर मत लड़ो। अपने दाहक पराक्रम से अपने ही बंधुओं को दग्ध मत करो। वह तत्क्षण सीधी गंगा के पात्र की ओर चल दी। उसकी देह गंगा को समर्पित करने का निश्चय कर। मेरा देह रूपी ध्वज दंड थरथराने लगा। अर्घदान से सुदृढ़ बनाया हुआ मन भी विचलित हो उठा। ठहरो, मैंने उसे लक्ष्य कर कहा। वल गायें खींचते जैसे राजरथ रुक जाता है, वैसे ही रुक गई। पास जाकर सौम्य भाव से मैं बोला, बताओ तुम क्या चाहती हो? दुर्योधन का पक्ष न छोड़ते हुए मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ? मेरे 5 पुत्रों को अभय दो, उनका अपने बंधुओं का वध मत करो। जननी होकर भी मैं तुम्हारे सामने आंचल पसार कर भिक्षा मांगती हूँ। इंद्र को कवच कुंडल दिए, दीन दुखियों को धन्य धान्य और वस्त्र दिए, मुझको इतना तो दान दे दो 5 जीवन का। अपने शांत मुख को हथेलियों में छिपा कर वैदराज स्त्री सिसकने लगी। राजभवन में सबकी माता के रूप में जिसे सम्मान प्राप्त था, वह राज स्त्री मेरा हृदय तिल तिल कर टूटने लगा। मेरे भाग्य में जो घटनाएं घटित हुई थी, उनको साक्षात अपने जीवन में देखने की परिस्थिति आज क्या स्वयं इस देव के सामने भी कभी आई होगी? मेरी जन्मदात्री मेरे सामने स्वयं को याचक समझ रही थी। दिया, यह अभय कर्ण तुम्हें देता है। युद्ध में एक अर्जुन के सिवाय मैं किसी का भी वध नहीं करूंगा। जाओ, यदि अर्जुन मारा गया तो मुझ समेत तुम्हारे 5 पुत्र जीवित रहेंगे, और यदि मैं मारा गया तो तुम्हारे 5 पुत्र ज्यों के त्यों सुरक्षित रहेंगे। ध्यान रखना, यह दान है। यह बात किसी से कहने का प्रयत्न मत करना। यह अभय है, वचन है। विश्व के इस विराट प्रसार में कौन किसको क्या दान कर सकता है? जाओ, तुम्हारे पुत्रों को राज्य संपत्ति सिंहासन और कीर्ति चाहिए, और तुम यही समझती हो कि वे अनंत काल तक इनका उपभोग करते रहेंगे, मानो वे अमृत प्राप्त कर आए हैं। परंतु स्मरण रखना, कर्ण क्या चाहता है यह तुम नहीं जान सकी हो। हस्तिनापुर का कोई भी व्यक्ति कभी जान नहीं सका है। सुनो, वह चाहता है आर्यों की भावी पीढ़ियों के कोटि कोटि मनों का अखंड अतुल राज्य। पांडवों के अग्रज के रूप में उनको अभय देना मेरा कर्तव्य था। समझ लो, वह मैंने दे दिया। इस अंतिम कर्तव्य की पूर्ति में मुझे कोई दुख नहीं हो रहा है। यदि मेरी मृत्यु की नींव पर ही पांडवों का जीवन टिक सकता है, तो नींव का वह पत्थर बनना ही मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। जाओ, तुम्हारे 4 पुत्रों पर मेरा विजय धनुष मर्मभेदी बाणों की वर्षा कदापि नहीं करेगा। तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ पुत्र कौन है, इसका निर्णय समय ही करेगा। पुत्र, तुम धन्य हो। मेरी यातनाओं से भी अधिक सघन यातनाएं जीवन भर चुपचाप सहन करने वाले तुम ही मेरे सर्वश्रेष्ठ पुत्र हो। आओ, अपनी यातनाएं मुझे दे दो, मेरी बाहों में आ जाओ। एक बार मुझे माता कहकर पुकार लो। मेरे वृद्ध कानों के रंध्र और पटल उस पुकार के लिए तरस रहे हैं। कर्ण, एक बार ही मुझे माता कह दो, आलिंगन दे दो। प्रकंपित लता की तरह वह भावना वेग से थरथराने लगी, परंतु मुझे अब संसार का कोई दृश्य द्रवित नहीं कर सका था। मैं कल कुरुओं का सेनापति होने वाला था, आज पांडवों की माता के अंक में कैसे जा सकता था? नहीं, वह अधिकार केवल राधा माता का है। जाओ तुम। कदम पर से उत्तरी खींचकर देह पर डालते हुए तर्जनी से मैंने उसको विदुर जी की पर्णकुटी की ओर संकेत किया। किनारे के तप्त बालों के छोटे लपटों से उसके शुभ्र केश चंचल हो उठे विचित्र ढंग से। बहते हुए आंसुओं को न रोकते हुई वह बालू रोंदती हुई चलने लगी। उसके पति चिन्हों की पंक्ति बालू पर बनने लगी। उसको देखते मुझे एकदम शोण की याद आ गई। उसके पैरों की ऐसी पंक्ति मैंने अनेक बार गंगा के किनारे देखी थी। शोण नहीं था, परंतु उसकी स्मृतियां मेरे हृदय में जीवित थी। वसु भैया कहने वाले उस सारथी पुत्र से देखा जाए तो मेरा रक्त मांस का संबंध ही क्या था। फिर भी निश्चल प्रेम के बकुल पुष्प जीवन भर क्या उसने मुझे नहीं दिए थे? सूखे हुए बकुल पुष्पों की गंध जैसे वातावरण में महकती रहती है, वैसे ही उसके चले जाने पर भी उसकी स्मृतियों की सुगंध मेरे अंतरंग में महक रही थी। एक सारथी होकर भी उसने एक क्षत्रिय पर निस्वार्थ प्रेम की वर्षा की थी, और मैं आज 9 महीने तक उदर में भार वहन करने वाली अपनी साक्षात जन्मदात्री को ठुकरा रहा था। 70 वर्षों का पुत्र वियोग सहन करने वाली अपनी माता का तिरस्कार कर रहा था। अच्छा हो या बुरा, जो जीवन मुझे प्राप्त हुआ था, क्या वह उसी के कारण अस्तित्व में नहीं आया था? योद्धाओं के इस जगत में सबने एक सेनापति के रूप में मेरा जो सम्मान किया, उस बड़प्पन का मद लेकर ही भावी जीवन बिताना है क्या? उसने अपने लिए मुझसे ऐसी कौन सी वस्तु मांगी थी? मैं एक बार माता कहकर पुकार लूं, यही तो। जीवन भर समस्त कर्तव्यों का सूक्ष्मता से पालन करने वाला मैं आज पुत्र कर्तव्य से वंचित होता हुआ न जाने कहाँ जा रहा था। भविष्य में वह फिर कभी मुझसे मिल सकेगी या कैसे कहा जा सकता था? सबके द्वारा पंडित व राजमाता एक पक्षिणी की तरह मेरे उत्तरी की छाया में कितनी देर तक खड़ी रही थी, यह बात भी मेरी समझ में क्यों नहीं आ सकी। कीर्ति का और महत्ता का मद सुरा के मद से अधिक होता है, यह क्या सत्य नहीं? कौन किसका सेनापति, कैसा योद्धा, कैसा महारथी? जो अपनी माता को ठुकराता है, उसको कहीं किसी स्वर्ग की प्राप्ति की आशा करने का क्या अधिकार है? मातृ श्रद्धा ही स्वर्ग है, वही है मुक्ति स्थान। मात ठहरो, दोनों हाथ उठाकर मैंने उसको पुकारा। अरण्य में मार्ग भूले बछड़े का रम्हाना सुनकर जैसे कोई गाय पूंछ उठाकर तथा कान खड़े कर अंधाधुंध दौड़ने लगती है, वैसे ही वह अपने वय स्थान समय अवसर सब कुछ भूलकर मेरा मात शब्द सुनते ही दौड़ पड़ी। मरुस्थल की लपलपाती ज्वालाएं भी उसकी विराग्नि के सम्मुख मुझे फीकी लगी। पास आते ही उसके चरणों पर लौटता हुआ मैं बोला, मात अपने इस कर्ण को क्षमा कर दो, तुम्हारे 5 पुत्रों को तुम्हारे कारण परमोच्च बिंदुओं के क्षण प्राप्त हुए, आनंद के, लोकप्रियता के, वैभव के, गौरव के, इसके लिए उन्होंने शत शत बार तुम्हारा वंदन में किया होगा। मात आज तुम्हारा प्रथम पुत्र तुम्हें पुत्र रूप में पहली बार वंदन करता है, कदाचित यह अंतिम भी हो। किस लिए कह रहा हूँ मैं यह? इसीलिए कि तुम्हारे कारण ही, केवल तुम्हारे ही कारण मुझे भी परमोच्च बिंदु का एक क्षण प्राप्त हुआ यातनाओं का। मेरे नेत्रों की आंसुओं की धार उसके चरणों पर लगे हुए बालुकणों को धोने लगी। उसके नेत्रों से बहता हुआ उसकी पवित्र आत्मा का जल मेरे मस्तक पर टप टप गिरने लगा। अब यदि देह की मुट्ठी भर बालू बन जाती और वह बालू इस मरुस्थल में विलीन हो जाती तो भी क्या बिगड़ने वाला था। उठ, मेरे मस्तक पर हाथ फेर कर कांपते हाथों से उसने मुझे उठाया। भर्राए स्वर में भरे हुए नेत्रों से वह बोली, कितना कितना लंबा हो गया है रे तू, मुझसे भी अधिक। आवेग से पास खींच कर उसने मुझे अपने प्रगाढ़ आलिंगन में भर लिया। उसकी ठिगनी देह में हिमालय के उच्च शिखरों को भी लज्जित कर देने वाला मात्र हृदय देखकर मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। नेत्रों से कृतार्थता के, धन्यता के तुषार कण उसके मस्तक के शुभ्र केशों पर गिरकर कहने लगे, मात तुम्हारे धवल केशों की तरह ही तुम्हारा जीवन धवल है, पवित्र है, शुचिभूत है, मेरा त्याग कर देने पर भी चाहे जगत कुछ भी कहे। क्षण भर को उसने अपना मस्तक मेरे वक्ष पर टेक दिया। कहे वह मेरे हृदय की धड़कनों से माता माता की पुकार तो नहीं सुनना चाहती थी? उसकी और मेरे मिश्रित अश्रुओं से पैरोतल की तप्त बालू भी क्षण भर को शांत हो गई। आसपास कमरस्थल को कौन सा आनंद मिल गया था, तेज के पुत्र का अपनी तेजस्वी माता से पुनः मिलना या सूर्यदेव को बताने के लिए वहां तप्त मरुस्थल के अतिरिक्त और कौन था? उससे लहराती हुई निकलने वाली तप्त लपट ऊंची, बहुत ऊंची उठकर गगनमंडल में मेरे पिता से कहने वाली थी, तुम्हारे चिरविरही पुत्र को उसकी चिरविरहणी माता मिली है। यह रही तुम्हारी स्मृति जो मैंने संभाल रखी थी। उसने अंशुक के छोर में बधी हुई दिग्विजय से लौटने पर आश्रम कन्या की टोकरी में डाली गई मेरी अंगूठी को मेरी कनिष्ठिका में पहना दिया। उसमें लगा हुआ पुष्कराज चमकने लगा। चलता हूँ मैं, पुनः एक बार उसके चरणों को स्पर्श कर मैं बालू रौंदता हुआ चल पड़ा। वह भी पर्णकुटी की ओर मार्गस्थ हो गई। 16 दानवीर दिग्विजयी अंगराज महाराज कर्ण। घोषकार ने जैसे ही घोषणा की, शिविर में बैठे हुए नीलध्वज, जलसन, भगदत्त, सहदेव, सिमितजय, महोजस, हेमकंपन, सायम्बनी, विपाट, रुचिपर्वा, वीरधनवा, वसुमित्र, जयवर्मन, जयद्रथ, प्रताप, शत्रुंजय, दरद, सुनामन आदि सेना प्रमुखों ने खड़े होकर मेरा प्रेमपूर्वक स्वागत किया। सेनापति का चयन करने का प्रस्ताव अश्वत्थामा ने रखा। चर्चा प्रारंभ हुई। दुर्योधन ने तपाक से उठकर सेनापति पद के लिए मेरा नाम सुझाया। अनेक ने अपने हाथ उछालकर उत्साह से उसका समर्थन किया। वे यह भूल रहे थे कि साक्षात परशुधारी परशुराम को पराजित करने वाला पितामह उनके बीच थे। इसीलिए मैं ही उठकर खड़ा हुआ। सब समझे कि मैं सेनापति पद स्वीकार करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मेरी इच्छा है कि हमारी कुल सेना का सेनापतित्व पितामह स्वीकार करे। उनमें भगवान परशुराम को भी पराजित करने का सामर्थ्य है। मैंने सबका भ्रम दूर किया। एक स्वर से सबने सेनापति के रूप में पितामह का जय जयकार किया। उसमें केवल दुर्योधन ने ही अपना स्वर नहीं मिलाया, क्योंकि वह मुझे सेनानायक बनाना चाहता था और उसके विचार को मैंने आघात पहुँचाया था। परंतु सभी योद्धाओं के सामने वह कुछ भी कह नहीं सकता था। पितामह ने आसन से उठकर सेनापति पद स्वीकार करने की घोषणा की। राजपुरोहित ने उनकी कलाई में धवल पुष्पों की माला बांधकर उनको अभिषेक से अलंकृत किया। पूर्वों के सेनापति युद्ध की योजना सेना प्रमुखों को सुनाने लगे। स्मरण रहे, जब कोई युद्ध नियम भंग कर देता है तब युद्ध अनुचित दिशा की ओर मुड़ जाता है। आप लोग योद्धा हैं, हत्यारे नहीं। तुम्हारी धैर्यपूर्ण सहायता के बल पर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि श्री कृष्ण से शस्त्र उठवा कर ही रहूँगा। इसीलिए मैं जिन जिन पथक प्रमुखों के नाम सेना नायक के रूप में बता रहा हूँ उनको अपने स्थान बिना किसी सूचना के नहीं छोड़ने हैं। आज्ञा का पालन ही विजय की आत्मा है। सारथी दल का प्रमुख प्रातिकामन रहेगा। वह मद्रराज शल्य के नेतृत्व में सारथियों का विभाजन करेगा। उसको यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी रथ संख्या 240,000 है। कहीं भी सारथी कम न रहें, यह सावधानी शल्य और प्रातिकामन रखेंगे। गजदल का नेतृत्व दुशासन करेगा। अलम्बुस, अलायुध और अंगारक, ये राक्षस राज उसकी सहायता करेंगे। गजदल की संख्या रथदल के बराबर ही है। ये लोग आज ही गजदल के प्रत्येक हाथी पर अंबारी चढ़वा लेने की तैयारी प्रारंभ कर देंगे। अश्वदल का नेतृत्व शकुनी करेंगे। संजय, क्षेमधूर्ति, चिरवासस और अश्वत्थामा उनकी सहायता करेंगे। अश्वदल की संख्या 721,000 है। यह अश्वदल उनकी आज्ञा के बिना बिल्कुल नहीं हिलेगा। पदाति दल का नेतृत्व दुर्योधन करेगा। जयद्रथ, समुद्रसेन और इंद्रवर्मा उसकी सहायता करेंगे। पदाति दल की संख्या 12,03,000 है। यह पदाति दल कभी अपने ही गजदल के सामने नहीं आएगा, ये लोग इसका ध्यान रखेंगे। हमारे सैन्य की कुल संख्या 24,05,700 है। यह सैन्य 4 प्रमुख भागों में विभक्त होगा, रथ, हाथी, अश्व और पैदल। कितनी भयंकर परिस्थिति क्यों ना आए, कोई भी दल एक दूसरे में मिलकर अव्यवस्था उत्पन्न नहीं करेगा। यह सावधानी दल नायकों को बड़ी गंभीरता से रखनी है। पाती, सेनामुख, गुल्म, गण, वाहिनी, कृतना, चमु, अनाकिनी, इनकी अनुशासनबद्ध हलचल करती हुई प्रत्येक अक्षौहिणी विजय की ओर प्रयाण करेगी। इस महायुद्ध में सबसे अधिक पराक्रम रथदल पर अवलंबित है। इसीलिए अब मैं रथदल के महारथी, अतिरथी, अर्धरथी और रथियों की नियुक्ति कर रहा हूँ। द्रोण और कृप, ये दोनों महारथी समस्त सैनिक की देखरेख करेंगे। अश्वत्थामा, जयद्रथ, शकुनी, दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण, शल्य, चित्रसेन, विभिषंति, दुःसह, जय, सत्यव्रत और पूर्वमित्र महारथी हैं। ये चाहे जिस समय रथदल का नेतृत्व कर सकेंगे। क्षेमधूर्ति, लक्ष्मण, बिंद, अनुबिंद, अपराजित, उलूक, सहदेव, भगदत्त, ये अतिरथी उनके पीछे पीछे आगे बढ़ते हुए उनको शक्तिशाली बनाएंगे। कुहर, करकाक्ष, अम्बष्टक, आर्जेव, क्रथ, गवाक्ष और कर्ण अर्धरथी हैं। कर्ण को मैं अर्धरथी बता रहा हूँ। यह सुनकर सबको आश्चर्य होगा, परंतु कवच कुंडल रहित और शापदग्ध आज के कर्ण की योग्यता अर्धरथी से अधिक नहीं है। वह सबसे ज्येष्ठ, निष्पक्ष और न्यायनिष्ठुर और सत्यप्रिय माना जाने वाला कुरुओं का वृद्ध योद्धा सेनापति पद के सूत्र हाथ में आते ही मुझे अर्धरथी के रूप में निर्देश करने लगा, मानो उसकी वृद्धि भ्रष्ट हो गई हो। हस्तिनापुर की सीमा के बाहर क्या है, यह उसे कभी ज्ञात भी नहीं था। वह पितामह मद्यपे की तरह विजयी सेनापति को अर्धरथी कह रहा था। किसी समय जिन योद्धाओं ने मेरे सामने धड़ाधड़ शरण ग्रहण की थी उन्हीं शत शत योद्धाओं को सम्मुख अपना इस प्रकार उल्लेख होता हुआ सुनकर मैं भ्रम में पड़ गया कि उनके सिर के केश अवस्था के अनुभव से श्वेत हुए हैं या सूर्य की किरणों से। कांपते हुए शरीर के साथ उनकी बुद्धि भी वृद्ध हो गई है क्या? अखाड़े में मुझे अजय धनुर्धर कहकर मेरा गौरव करने वाला वह न्यायप्रिय योद्धा क्या यही है? क्षण भर पहले सेनापति के रूप में जिसकी नियुक्ति करने के लिए सबने सोत्साह समर्थन किया था उसी को अर्धरथी कहते हुए उसका सिर फिर गया है? या मेरे मस्तक पर बहुत से लोगों ने अवहेलना के जो अंगार रखे हैं उनमें कुछ कमी होने के कारण युद्ध से पूर्व इस पवित्र कर्म को स्वयं कर रहा है? मैंने यह माना था कि संसार में सत्य उसके रूप में आज भी जीवित है। क्या वह मुझे यह विश्वास कराना चाहता है कि मेरी मान्यता असत्य है? मुझे ठुकराने वालों में कोई भी वृद्ध अब तक नहीं रहा था। इस कमी को वह आज सभी योद्धाओं के सामने पूर्ण कर रहा है। क्या भीष्म, गंगापुत्र, परशुराम शिष्य, श्री कृष्ण, भक्त भीष्म, सेनापति पद के योग्य एक दिग्विजयी वीर का एक क्षुद्र अर्धरथी के रूप में निर्देश कर रहा है? आह, मुझे ऐसा लगा जैसे इस संसार में सत्य का अस्तित्व बिल्कुल नहीं रहा। कानों के रंध्र सरसराते हुए तप्त होने लगे, कंठ की नसें फूल गई, आंखों के चंद्र सूर्य संतप्त हो गए। तो आज इस कपटी वृद्ध का दान भी इसकी झोली में डालना पड़ेगा। वह गंगा में खड़ा होकर तप करने वाला सूर्य भक्त था, किसी भी साक्षात सूर्यपुत्र को नहीं पहचान पा रहा था। आज उसको उसकी पहचान करानी ही पड़ेगी। ठीक है, कर्तव्य करते हुए यदि श्रद्धा और स्नेह को इतनी कठोरता से दूर ही करना पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। खोंडर में बैठे हुई चमगादड़ और अधिकार के आसन से चिपके हुए दम्भी वृद्ध, इनमें कोई अंतर नहीं होता। दोनों ही अंधे हो जाते हैं। अज्ञान से अथवा अहंकार से उन्हें यह कभी दिखाई ही नहीं पड़ता है कि संसार में क्या हो रहा है। उनकी आंखें खोलने का समय आ गया था। मैं तपाक से उठ खड़ा हुआ। पितामह, मैं अर्धरथी की क्या सादा अंशरथी भी नहीं हूँ, मैं केवल एक सारथी का पुत्र हूँ। परंतु स्मरण रखिए, आपके अहंकारी नेतृत्व में यह साधारण स्वाभिमानी सारथी पुत्र लड़ने को इच्छुक नहीं है। यह बात आज मैं सभी विक्रमी योद्धाओं को बता देना चाहता हूँ। जब तक अर्जुन के अमोघ बाणों से महारथी कहलाने वाले आप आहत होकर धरती पर नहीं गिरेंगे तब तक यह कर्ण हाथ में शस्त्र धारण नहीं करेगा। जाइए, अपने नेतृत्व की संपूर्ण शक्ति दांव पर लगाकर किसी एक ही पांडव को मौत के घाट उतारने का विक्रम दिखाइए और फिर इसके बाद ही इस कर्ण को अपने महारथी पद का गौरवगान सुनाइए। पांडवों की हाँ में हाँ मिलाने में बीता हुआ आपका आयुष्य यह विक्रम करने में असमर्थ है। कौरवों के सेना प्रमुखों, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आप लोगों को एकाकी छोड़कर जा रहा हूँ। आप सभी कुछ उल्टा हो गया है, आज सभी कुछ उल्टा हो गया है। हिमालय के शिखर से भी ज्वालामुखी का उद्रेक हो रहा है। कंठ में पड़ी हुई पुष्पमाला भुजंग बनकर आज कुरुओं के कंठनाल को ही डस रही है। इसलिए सावधान रहने का संकेत भर कर रहा हूँ। संभल जाइए, इस दम्भी और कपटी वृद्ध का पतन होते ही मुझे आवाज़ दीजिएगा, मैं सेवा के लिए तत्पर हूँ। वचन के प्रति जागरूक हूँ, शब्द के प्रति निष्ठावान हूँ, लेकिन आज मुझे क्षमा कर दीजिए। पृथ्वी का सर्वनाश भले ही हो जाए लेकिन इस सेनापति के नेतृत्व में लड़ने में मैं असमर्थ हूँ। मैं रणांगण के भय से मुंह मोड़कर पलायन कर रहा हूँ। यह आरोप लगाने का साहस कोई न करे क्योंकि मैं रणांगण नहीं छोड़ूंगा। युद्ध भूमि में बने अपने शिविर को छोड़कर मैं राजनगर नहीं जाऊंगा। किस पर क्या प्रतिक्रिया होगी यह देखे बिना ही मैं तत्क्षण वहां से बाहर निकल आया। विक्षुब्ध महासागर में लहरों के साथ जूझता, असंख्य थपेड़े खाता हुआ शुष्क लकड़ी का कुंदा अंत में सागर के किनारे आकर निश्चेष्ट पड़ जाता है, वैसे ही मेरा मन भाव शून्य और संज्ञाहीन होकर शरीर में कहीं निश्चेष्ट हो गया था। युद्धभूमि के किनारे पर खड़े खड़े इतर योद्धाओं के पराक्रमों का वर्णन सुनने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं किया जा सकता था। अब यदि भीष्म पितामह आहत होकर न गिरे तो केवल इस विचार मात्र से ही मन और अधिक सुन्न हो गया। 17. मेरे शिविर से युद्धभूमि का विशाल समरांगण सामने स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था। सत्यसेन के अतिरिक्त शिविर में कोई भी नहीं था। दुर्योधन और अश्वत्थामा के अतिरिक्त अन्य किसी को भी भीतर मत आने दो या कठोर आज्ञा उसे मैंने दे रखी थी। वह सैन्य की महत्वपूर्ण सभी सूचनाएं मुझे सुना रहा था। विदर्भ से आए हुए धैर्यशाली रुक्मी राजा को दुर्योधन ने अपनी सेना में सम्मिलित नहीं किया था। उसको यह आशंका थी कि रुक्मी ठीक समय पर पांडवों की सहायता करेगा। हाँ, नकुल सहदेव के सगे मामा मद्रराज शल्य को उसने स्वीकार कर लिया था। इतना ही नहीं, अपितु सारथियों का दल उसके अधीन करके अपनी सेना के पतवार पितामह ने पांडवों के संबंधियों के हाथ में ही दे दी थी। रुक्मी, भूरी तेजस और भूमिपाल, ये राजा दोनों ओर से तटस्थ समझे गए। दोनों सैन्यों में उनके ध्वज कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। पूर्व की ओर पांडवों के शिविर कुरुक्षेत्र के आसपास लगने लगे। मत्स्य, पांचाल, राक्षस आदि के ध्वज सामने फहराते हुए दिखाई देने लगे। उनकी सैन्य संख्या बहुत ही कम दिखाई दे रही थी। उनकी सैन्य संख्या 15 लक्ष के आसपास थी। सत्यसेन का अनुमान था कि उनकी यह सेना कुरुओं के टक्कर के सामने टिक न सकेगी। पांडवों ने अर्जुन को सेनापति नियुक्त किया है, यह समाचार कुरुसेना में फैल गया था। मेरे सामने अर्जुन का नंदी घोष रथ सिर पर कपिध्वज धारण किए भव्यता से खड़ा था, परंतु मेरा जैत्र रथ मस्तक पर हाथी की श्रृंखला और दंडांकित ध्वज लिए रथदल में यूं ही पड़ा हुआ था। पितामह ने उसके चक्र उखाड़ डाले थे। क्यों? जीवन के अंतिम समय में इतना बड़ा पातक उस वृद्ध ने क्यों किया? क्या केवल अर्जुन के प्रेमवश? आसन पर बैठकर शिविर की श्वेत छत से मैं असंख्य प्रश्न पूछ रहा था। एक का भी उत्तर नहीं मिल रहा था। रात में जलने वाली मशाल की तरह मन जल जल कर रात्रियों को जगा रहा था। राधा माता, अधीरथ, वृषाली, सुप्रिया, सत्यसेन, मेघमाला, मेरे 7 पुत्र और मीनाक्षी, यही वास्तव में क्या मेरे अपने नहीं थे? किंतु प्रतिज्ञा के कारण राजनगर में जाकर उनसे मिलना संभव नहीं था। वृषसेन, चित्रसेन, सुदामा, प्रसेन, सुशर्मा और भानुसेन, मेरे ये 6 पुत्र योद्धाओं के वेश में मेरे सामने उपस्थित हुए। वे कुछ भी नहीं कह रहे थे। जब मैंने प्रश्न किया तो सबसे ज्येष्ठ वृषसेन धैर्यपूर्वक बोला, महाराज, यदि आप रणांगण में नहीं उतरेंगे तो हम भी वेश उतार कर चुपचाप बैठे रहेंगे। उनके विचारों से मुझे बड़ा धक्का लगा। पिता से एकनिष्ठ रहते हुए वे राज निष्ठा को पैरों तले दौड़ रहे थे। मेरे पुत्रों, ध्यान रखो, तुम मेरे पुत्र हो फिर भी कुरु योद्धा हो। तुम्हारा सेनापति तुम्हें जो आज्ञा दे उसे सिर झुकाकर तुमको माननी चाहिए। अपनी माता के, महामाता के और पिताजी के आशीर्वाद लेकर सेनापति के आगे पीछे समरांगण में उतरो। जाओ, यह तुम्हारे पिता की आज्ञा है तुम्हें। मैंने शिविर की जालीदार गवाक्ष से बाहर दृश्य द्वति के जल की ओर देखते हुए उनको आज्ञा दी। जो आज्ञा तात, वे मुझे वंदन करके चले गए। उनमें वृषकेतु कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा था। वृषु क्यों नहीं आया मुझसे मिलने? मैंने अपने आप से यही प्रश्न किया। वह आपसे रूठ गया है, आप राजनगर जाने को तैयार नहीं, इसीलिए। सत्यसेन ने समझा कि मैंने उससे ही कुछ पूछा है, इसीलिए उसने तत्परता से आगे बढ़कर उत्तर दिया। सत्यसेन, जाओ, उस नटखट को भी किसी बहाने शिविर तक ले आओ, उसको समझाना आवश्यक है। 18। कुरुक्षेत्र के आसपास की छवनियों में ज्योत्सना में नहाते हुए शिविर शांत खड़े थे। मेरे जीवन शिविर पर प्रेम ज्योत्सना की वर्षा करने वाले मेरे स्वजन राजनगर के राजभवन में थे। मैं कुरुक्षेत्र के किनारे शिविर में शैया पर पड़ा हुआ न आने वाली निद्रा को प्रसन्न करने का व्यर्थ प्रयत्न कर रहा था। 60 वर्ष वाले शोण के साथ जब हस्तिनापुर आया था, तब यदि किसी ने कहा होता कि मेरे जीवन में ये घटनाएं होने वाली हैं, तो उस समय मैंने उस पर कभी विश्वास न किया होता। आज वह सब घटित हो रहा था। अनपेक्षित विस्मयजन्य जिम्म बाण की तरह टेढ़ा मेढ़ा, अब उसके अनेक मोड़ों पर स्मरण भी नहीं था। जिन घटनाओं को भूलना चाहता था उनको भूल नहीं पा रहा था। मेरे शिविर के चारों ओर छावनियों में लेटे हुए असंख्य शिविरों की तरह मेरी स्मृतियां भी थीं। आकाश में चंद्रमा के साथ चमचमाती हुई तारिकाओं की तरह वे अगणित थी। दृष्टद्वती की लहरों की तरह जिन्हें गिना नहीं जा सकता। निद्रा मुझ पर प्रसन्न नहीं हो रही थी, इसीलिए शैया से उठकर चंद्रिका सिर पर धारण करता हुआ युद्धभूमि में पहुंचा। श्वेत शुभ्र राख की पट्टियां देह पर लगाए हुए उस सम्रांगण को देखकर एकदम मामाजी के दूत का पट याद आ गया। इस धरती के पट पर कल से असंख्य जीवनों का दूत खेला जाएगा। जो पासा मृत्यु डालेगी वही प्रत्येक को स्वीकार करना पड़ेगा। चुपचाप हर स्थान को नियति की इतना पूर्ण पावन कर देती है। इसी भूमि पर महाराज गुरु ने असंख्य महायज्ञ किए थे। कल से यहाँ जीवन यज्ञ प्रारंभ होगा। झुककर एक मुट्ठी मिट्टी हाथ में लेकर मैंने मस्तक से लगाई। मिट्टी, दुर्योधन की राजनीति, अश्वत्थामा का आत्मिक गंभीर ज्ञान, मामा का कपट दुशासन का अभिचार, पितामह की विवशता भरी तटस्थता, गुरु द्रोण की सामाजिक आदर्श की भ्रांत कल्पना, महाराज धृतराष्ट्र के अंधे नेत्रों के पीछे छिपा हुआ स्वस्नेह स्वार्थ, विदुर जी का अयशस्वी संन्यास, मेरा जीवन भर का विभ्रम, पांडवों का मेरे संबंध में अज्ञान, कुंती माता का हृदय दबित कर देने वाला दुख, गांधारी देवी की जानबूझकर मुदे गए नेत्र, राधा माता के पाषाण को विद्रवित कर देने वाली अवाक मूक ममता, शोण का निर्लस प्रेम भाव, वैशाली और सुप्रिया के स्वालीन स्त्री हृदय, मेरे पुत्रों का आज्ञापरक मनोभाव, कुरुओं की और पांडवों की सेनाओं में शस्त्र हाथ में लेकर खड़े होने वाले प्रत्येक सैनिक की असीम राजनिष्ठा, मित्र निष्ठा या तत्व निष्ठा, श्री कृष्ण से प्रकट होने वाला अद्वितीय छात्र तेज, यह सब इस मिट्टी से ही उत्पन्न होकर प्रवृद्ध नहीं हुआ था क्या? मैंने वह मुट्ठी भर मिट्टी अपने उत्तरी के छोर में श्रद्धापूर्वक बांध ली। चंद्रिका में निखर उठने वाली राख की पट्टियां कल अस्तित्वहीन हो जाएंगी। वर्षा के जल के अतिरिक्त किसी से भी न भीगने वाला यह कुरुक्षेत्र कल रक्त स्वेद और अश्रुओं से भीग जाएगा। द्रव द्रव से मिलेगा, मूल तत्व पंचमहाभूतों से मिलेगा, आत्माओं की अमर ज्योतियां परमात्मा के तेजो निधि से मिलेंगी। इस युद्ध भूमि के निनाद भविष्य में युगों युगों तक आर्यभूमि में गूंजते रहेंगे। 40 लक्ष योद्धाओं की 80 लक्ष भुजाओं के पराक्रम का वर्णन करने में भावी पीढ़ियों के कोटि कोटि हाथ भी असमर्थ नहीं होंगे, समर्थ नहीं होंगे, उनका गुणगान कोटि कोटि मुख भी नहीं कर पाएंगे। सरस्वती का धवल पात्र ऐसे ही बहता रहेगा। इस युद्धभूमि के अवाक नीरव निःशब्द धूलिकण सूर्य प्रकाश में अनंत काल तक ऐसे ही चमकते रहेंगे। हे पुण्यवान आर्य भूमि प्रणाम। दोनों हाथ जोड़कर मैंने उस संग्राम भूमि को सिर झुकाकर प्रणाम किया। शिविर में आकर शैया पर लेटते ही मुझे गाढ़ निद्रा आ गई।